ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। दिल्ली नगर निगम गुरुवार को वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित बजट प्रस्तुत करेगा। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 2 दिन जलापूर्ति प्रभावित रहेगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने समग्र विकास पर बल देते हुए शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आज जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता पर काबू पाने के उपायों के बारे में विद्यार्थियों से बात की।
बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते।
प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण और आरोग्य के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज और सब्जियां खाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नींद पोषण पर निर्भर है।
पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दबाव से तनाव मुक्त होकर तैयारी करने और खुद को चुनौती देते रहने की सलाह दी। परीक्षा पे चर्चा के इस संस्करण में प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया था। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान जीडीपी में देश के विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी कम हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी 15.07% थी, जो वर्ष 2023 में गिरकर 12.93% रह गई है। उन्होंने अमेरिका से भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेजने के मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस सदस्यों के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के उठाए गए कदमों की सूची पेश की। उन्होंने कहा कि अप्रवासियों को स्वदेश भेजने की मानक संचालन प्रक्रिया वर्ष 2012 से ही लागू है। संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा जारी है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में बजट की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कल्याण के लिए इस बजट में प्रत्येक क्षेत्र के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंचाइयां छू रही है और 5वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 3 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। दूसरी ओर कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि नोटबंदी के दौरान सरकार ने जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की बात कही थी उसमें वे विफल रही है। बजट में करदाताओं को कर में छूट देने के लिए की गई घोषणा के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से करदाता इसकी मांग कर रहे थे। राजकोषीय घाटे के मामले में उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। श्री तिवारी ने आरोप लगाया कि देश के कृषि क्षेत्र को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए के अधिकारियों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में एक समर्पित भारत ईएफटीए डेस्क का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि ये मंच भारत और ईएफटीए के व्यवसायों के बीच एक सेतु का काम करेगा। ये व्यापार सुविधा नियामक मार्गदर्शन प्रदान करेगा और भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत में 100 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे भारत और EFTA के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिसवाज ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की सफलता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजधानी में मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न हुई। श्रीमती वाज ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोपों को धैर्यपूर्वक निवारण करने और उनका खंडन करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए गए। इसके लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंचों का प्रभावी उपयोग किया, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हुआ और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रही। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और गलत सूचना को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को करोड़ों कार्यकर्ताओं की जीत बताया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में आज श्री रूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की जीत की शुरुआत हरियाणा और महाराष्ट्र से हुई थी और अब दिल्ली में भी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। श्री रूड़ी ने दावा किया कि भाजपा को बिहार में भी बेहतर समर्थन मिलेगा।
आज भारतीय जनता पार्टी की जीत करोड़ों कार्यकर्ताओं की जीत है। वो शुरुआत हुआ हरियाणा से, उसके बाद महाराष्ट्र में और अब दिल्ली में। प्रामाणिकता से देश के प्रधानमंत्री का जो अभियान है, देश के प्रति जो ईमानदारी के साथ देश की सेवा में है, प्रदर्शित है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज भलसवा क्षेत्र में डंपिंग साइट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से डंपिंग साइट के निपटान और कूड़े तथा मलबे का प्राकृतिक रूप से समाधान करने पर चर्चा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का ये पहला दौरा था। दिल्ली नगर निगम गुरुवार को एक विशेष सभा का आयोजन करेगा। इस सभा में वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमानित बजट और वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त दोनों बजटों को पेश करेंगे। इस दौरान वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित किए जाने वाले कर की दरों पर भी विचार किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में अगले दो दिन जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक कल ए, बी और सी ब्लॉक जनकपुरी, विकासपुरी, सूरजमल विहार, विश्वासनगर, कस्तूरबा नगर, योजना विहार, श्रेष्ठ विहार और ज्वालानगर में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं बुधवार को शहर के जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी उनमें सी और ए ब्लॉक जनकपुरी, बोडेला बीपीएस, विकासपुरी, पीतमपुरा और शालीमार बाग शामिल हैं। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 011-23538495 और 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगवाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रख्यात यूनानी चिकित्सक, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान की जयंती मनाई जाती है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत यूनानी औषधि अनुसंधान की केंद्रीय परिषद इस दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस सम्मेलन में समुचित स्वास्थ्य समाधान के लिए चर्चा की जाएगी। यूनानी दिवस 2025 का विषय है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, वैश्विक स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली के विकास के लिए यूनानी औषधियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला जाएगा। समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच निर्माणाधीन देश की प्रथम नमो भारत कॉरिडोर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने मेरठ साउथ और मेरठ के शताब्दी नगर के बीच ट्रायल रन शुरू कर दिया है। छह किलोमीटर के इस खंड पर नमो भारत रेल का ट्रायल पूरा होने पर नमो भारत रेल का परिचालन मेरठ शहर के और नजदीक हो जाएगा। एनसीआरटीसी ने बताया है कि इस ट्रायल के दौरान सिविल संरचना की अनुकूलता की जांच करने के लिए नमो भारत रेल को आरंभ में मैनुअल रूप से संचालित किया जाएगा। परीक्षण की इस प्रक्रिया में रेल के एकीकृत प्रदर्शन और सिग्नलिंग, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, ओवरहेड सप्लाई सिस्टम आदि जैसी विभिन्न उप प्रणालियों के साथ इसके समन्वय को स्थापित करने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। वर्तमान में नमो भारत ट्रेन सेवाएं न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक 55 किलोमीटर के खंड में परिचालित हैं। मेरठ साउथ से शताब्दी नगर सेक्शन के परिचालित होने के साथ कॉरिडोर का विस्तार 61 किलोमीटर में हो जाएगा, जिसमें 12 नमो भारत स्टेशन शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने बाल तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर 2 नवजात शिशुओं को छुड़ाया है। दिल्ली पुलिस के जिला पुलिस उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि जांच में सामने आया है कि गिरोह में शामिल एक दंपत्ति बच्चों का अपहरण करता था। इसके बाद दंपत्ति फर्जी डॉक्टर और वकील की मदद से बच्चे को गोद ले लेता था और ग्राहक मिलने पर उस बच्चे को बेच दिया जाता था। श्री मल्होत्रा ने बताया कि इस गिरोह के भंडाफोड़ से अन्य 3 मामलों का भी खुलासा हुआ है।
केसेस हमारे वर्कआउट हुए थे, इसमें तीनों के केसेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के थे। वो लेडी बच्चों को किडनैप करती थी, देन अपने ही घर पे एज अ फैमिली उस बच्चे को थोड़ी देर रखते थे, फिर उस बच्चे को जो सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर एंड सेल्फ प्रोक्लेम एडवोकेट इनके थ्रू उस बच्चों की अडॉप्शन करवाते।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर ने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज 20 से अधिक ट्रेनें चलाई गई। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री शेखर ने कहा कि प्रयागराज के सभी 8 स्टेशन यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आगंतुकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और रेलवे स्टेशनों पर एक नियंत्रण केंद्र बनाया गया है।
प्रयागराज जंक्शन पर तो मुख्य कमांड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें 1000 से ज्यादा कैमरे का कवरेज है, लेकिन प्रयाग स्टेशन पर भी लोकल लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए अलग से कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां सीसीटीवी कैमरेज की मदद से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों के फ्लो को भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर रेलवे का और विशेषकर उत्तर रेलवे का ये प्रयास है कि हमारे यात्री जो भी सम्मानित स्नानार्थी आ रहे हैं वो व्यवस्थित रूप से आए, संगम स्नान करें, व्यवस्थित रूप से अपनी ट्रेन में बैठें।
श्री शेखर ने लोगों से ट्रेन रद्द होने से संबंधित अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान के शीतकालीन संस्करण में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वर्ष उद्यान में पर्यटकों के बीच ट्यूलिप और अन्य प्रजातियों के 140 प्रकार के गुलाब के फूल आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के 80 से ज्यादा प्रजातियों के फूल भी आगंतुकों को खूब पसंद आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 30 मार्च तक खुले रहने वाले इस उद्यान में आगंतुक सप्ताह में मंगलवार से लेकर रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। सोमवार को रखरखाव के कारण उद्यान बंद रहता है। अमृत उद्यान में घूमने के लिए बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से टिकट बुक किए जा सकते हैं। आकाशवाणी अपने द्विभाषी लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर चर्चा करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रेहान सौर ऊर्जा, इसके लाभों और इससे संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। कार्यक्रम का प्रसारण रात 9:30 बजे किया जाएगा। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। दिल्ली नगर निगम गुरुवार को वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित बजट प्रस्तुत करेगा। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में अगले 2 दिन जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।